ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो अङ्गश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्गञ्जरुगरोचिसंविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणान्तिके
आज के हमरा गिरिराजे कृपाते प्रथमे दान घाटी दान निवर कर्मकुंड अन्न और गांव गोविंद कुंड कुछरी नौर के कुंड गंधर्वा कुंड अप्सरा कुंड
राघव पंडित गुहा
राशस्थली सुरभि कुंड ऐरावत कुंड रुद्र कुंड रास्ता बिच्छू कुंड एक ओखान आबार दान घाटी हुए फिर हमार मन से ओखाने दान घाटी गोविंद कुंड इत्यादि कुछ हरिकथा ओखानकार महात्म बोला तथापि इन ब्रीफ आई वांट टू रिक्वेस्ट पद्मनाभ महाराज टू स्पीक अबाउट दान घाट इन ब्रीफ बेटर यू कैन कम फॉरवर्ड Only two books, four, five, six books you should take and shut up the books, no need of.
So every year when we begin to perform our Shigiraj Govardhan Paritamai, we begin at the place called Dan Gati. So this is a very special place in the Leelas of Radha and Krishna and has been written about very extensively in the books of Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami, in their books Dan Keli Komodi and Dan Keli Chintamani. This place is also referred to in the Govardhan Ashtakam of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, where he describes that he desires that he will be able to go there to that place, Damgati, on his Giriraj, on his Govardhan Parikrama. And when he attains the mercy of Sri Giriraj Govardhan, he will be able to see that beautiful, sweet pastime of praying Kalaha, meaning the arguments that took place, filled with praying ras of between Shishi Radha and Krishna and the gopis. So, Damgati is situated in the middle of Govardhan Hill, and in former times, it was practically the only place which was lying low enough. There was a trail, a pathway through which one could pass, but it was very narrow. And from one side of Govardhan Hill to the other side, that was how the residents surrounding Govardhan would be able to cross over, rather than going all the way around Kira, which is very long. So the Vrajagopis, they were carrying milk products, as they always do, because the gopis and the gopas are cowherd people, and therefore they're always dealing in the milk products. So the gopis were carrying yogurt and also butter in the pots balancing on their heads, because one rishi, Bhagavati Rishi, wanted to perform a very special jagya on the other side of Govardhan. So the gopis, for that purpose, they were coming. But actually, we know that in the pastimes of Radha and Krishna, there are so many excuses that the Raja gopis are using to go out of their houses. And they go into the forest of Vrindavan, they come to Giriraj Govardhan, they go all over Braj Mandala to perform various types of puja and yajnas. But actually, what is their real intention? It is to meet their dearmost beloved, their prana priyatama, Sri Krishna. So, in this case, the Vrajagopis, they were coming with carrying the pots, balancing 2-3 pots on their heads, and they were coming to this place of Damgati. So, Dan actually means charity, to give charity or to pay taxes. So Sri Krishna and the cowherd boys, very mischievously, they situated themselves there at this passing way. And when the Vrajagopis began to come through, then suddenly, Sri Krishna stood blocking the way. And the cowherd boys also stood by Krishna. And at that time, Krishna said to them, where do you think that you are going? And they said, we are going across to the other side. Who do you think that you are? And then Krishna said, no, I am the king of this place. I am the king. So if you want to pass by here, then you have to pay me taxes. Because this place, it is my kingdom. And I have jurisdiction over this place. So very quickly, Lalita, she said, what? Don, what kind of taxes do you want that we have to pay? We don't have to pay any taxes here. We've never paid any taxes before. And then Krishna said, I don't care. I am the king of this place, and you will have to pay down. You will have to pay taxes to me. And then Srimati Radhika, she said, that how do you say that you are the king of this place? Have you inherited this from your father? Now you have become the king, the prince, and your father is the king? And then Sri Krishna said, no, I have inherited this place because my wife is Vrinda. And Vrinda, she is the queen. She is the predominating deity of all of Vrindavan forest. So therefore, because she is my wife, it is my property. And then the Vrajagopis all clapped and laughed. And they said, what is this? How do you say that you are the king and that Vrinda is your queen? And that Vrinda is your wife. We will ask Vrinda. So then they summoned Vrinda to come. And Vrinda Devi, she was asked, can you tell us that this is your husband, this black person here? And then Vrinda said, that black person? I have never seen this black person before. And all the Brajagopis began to laugh and clap their hands very victoriously. And then she said, he is nothing but a lying Dibauji. I have no relation with him. So this conversation between the Brajagopis and Sri Krishna, it continued for so many hours of frame kalaha, very clever exchanges of words and mixed meanings of all of their words. But what was the actual purpose of this? Sri Krishna is Rasika Shekhar. He is the most expert taster of all rasas. And with the Brajagopis, he tastes the highest variety of rasas because they are so clever, so expert in all the arts, and they're filled with praying. So therefore it's called praying kalaha, an argument filled with praying. But in the end, finally, the Brajagopis were forced by Krishna to pay taxes. So what was the taxes that they paid? They had to give some daan to Krishna. They gave some milk, some yogurt, like this, as they were passing. But actually what they were giving to Krishna was their praying, which was overflowing from their hearts. So in this way, Krishna was victorious there at Dan Gati. But the Brajagopis, they are not going to settle for this. So therefore, the Brajagopis, they decided to get revenge against Krishna for playing such a trick on them and forcing them. So one day, just nearby, as we continued on our parikrama, there was a kunda there, and this is called Dan Vivartan Kunda. So one day when Krishna was coming there with his cowherd boyfriends, the Brajagopis, they had a very good plan, and they all hid in the forest, in all the trees and kunjas surrounding that area, thousands and thousands of gopis. And as the Krishna came there with his cows and cowherd boys, oh, then suddenly the gopis, they jumped out of the trees and they captured Krishna. They overpowered Krishna. They overpowered Madhumangala and all the other cowherd boys. And now they took Krishna and they dressed him as a Brajagopi. They put him in the clothes of a gopi with a veil over his head. And then they forced him to put pots on his head of yogurt. So now Krishna was standing there dressed as a gopi, and Srimati Radhika came, and with the end of a cowherding stick, she broke the pot of yogurt, and it came showering down on Krishna. And he got all completely filled from head to toe, covered with yogurt. So in this way, the Brajagopis clapped and laughed, and Sri Krishna was temporarily embarrassed, but actually he enjoyed this so much, because the Brajagopis were actually giving him abhishek of their praying. So this is called Dan Vivartan Kunda, where in that place Sri Krishna was given revenge by the Brajagopis. And these pastimes, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Srila Raghunath Das Goswami, in their ashtakams, they are praying that I may be able to come there to Dan Gati, and I may be able to relish and witness this beautiful, sweet lila. And I will be on the side of Srimati Radhika when the Brajagopis are victorious. Oh, then I will clap and I will chant Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe. Wonderful.
Next time,
Bhagavad Rishi Govinda Kundare Nikate Jagya Karte Chilen. গোপীরা দলে দলে দধি মক্ষণ ঘি গোরস সব নিয়ে ওখানে যাবে। তখন যেখানে দান ঘাটি, তখন ওই দান ঘাটি পার করছিলেন। কৃষ্ণ বললেন যে এইটা আমার রাজ্য, আপনাদেরকে ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে। তখন গোপীরা বললেন যে সে কিসের ট্যাক্স? এটা তোমার সম্পত্তি না তোমার বাবা দাদার সম্পত্তি যে আমরা ট্যাক্স দিয়ে যাব? কিসের ট্যাক্স? তারপরে কৃষ্ণ বললেন যে সে যদি আমার বাবা আর দাদার ঠাকুরের সম্পত্তি নয়, রাজ্য নয়, কিন্তু বৃন্দাসনে আমার বিবাহ হয়েছে, এই জন্য বৃন্দাবন হচ্ছে বৃন্দা দেবী, তিনি রাজ্যতে আমাকে দিয়েছেন, এই জন্য স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারীর প্রতি। গোপীরা বলে যে তোমার কাছে কথা বিশ্বাস করবো না, বৃন্দাদেবীকে ডেকে নিয়ে আস। বৃন্দাদেবীকে ডেকে আনা হয়েছে, আর সেই সময় বৃন্দাবন বৃন্দাদেবীকে জিজ্ঞাসা, তোমার সঙ্গে কি এর বিবাহ হয়েছে? তখন তিনি বললেন যে সে আমার কোনো দিনের সঙ্গে কোনো বিবাহ নাই। এটা তো মনে করে যে সে সব ব্রজের যত গোপী আমারই বিবাহিতা স্ত্রী, আমার সঙ্গে কোনোদিন বিবাহ হয়নি। তখন গোপীরা তালি বাজিয়ে হাসতে লাগলো। কিন্তু কৃষ্ণ বললেন যে সে আপনাদেরকে দান দিতে হবে, যে আপনার রাজ্য একটি গাছ, একটি লতা, একটি ফুল গাছের কোন পৌধা লাগিয়েছেন কি? আর তার মধ্যে জল দিয়ে সিঞ্চন করেছ কি? আর দেখো তুমি সিঞ্চন তো করো নাই, গরু দলে দলে নিয়ে এসে যত ব্রজের যত ঘাস টাস যা কিছু বন জঙ্গল তুমি নষ্ট করছ, অতএব তুমি রাজা নও। কৃষ্ণ তপি আপনাদেরকে দান দিতে হবে। তখন গোপীরা ওই দানের বাহানে, প্রেম কলহের বাহানে তাকে দধি দুগ্ধ কিছু দিয়েছে। তারপরে দান নিবর্তন কুণ্ডেতে গোপীরা কৃষ্ণের নিকটেতে দান নিয়েছিল। এরপরে আমরা গোবিন্দ কুণ্ডেতে, তুমি গোবিন্দ কুণ্ডের কথা বলো তো কিছু সংক্ষেপে।
আজ আমরা গুরু বৈষ্ণবের অনুরক্তি পরিক্রমা করতে করতে, বড় পরিক্রমা করতে করতে দান ঘাটির পরে আমরা আলোর গ্রাম, এবং আলোর গ্রামের পরে গোবিন্দ কুণ্ডের স্থানে আমরা দর্শনে যাই। এই গোবিন্দ কুণ্ড বজ্রনাথ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এখানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের এক নাম গোবিন্দ প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দ্র যখন সমস্ত ব্রজমন্ডলকে কুপিত হয়ে, ব্রজবাসীর প্রতি কুপিত হয়ে ইন্দ্র পূজা না করার জন্য তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সমস্ত মুসলধারে সাত দিন সাত রাত সমস্ত ব্রজমন্ডলকে যখন ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময় ভগবান তিনি গোবর্ধন ধারণ করে সমস্ত ব্রজমন্ডল ব্রজবাসীকে সকলকে তিনি রক্ষা করেছিলেন, এবং সেখানে সমস্ত ব্রজবাসী ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন। তখন দেখলেন কি ইন্দ্র কোনোভাবেই এই ব্রজমন্ডলকে সম্ভবত মেঘ ইত্যাদি মুসলধার বৃষ্টির দ্বারাও ধ্বংস করা গেল না। তখন তিনি ব্রহ্মা শরণাপন্ন হলে নিজের অপরাধ বুঝতে পারলেন। ব্রহ্মা শরণাপন্ন হতে তিনি তখন বললেন, আমি এই সমস্ত ভগবানকে সাধারণ ভাবে মানুষ মনে করে তার প্রতি আমার কিছু কিছু অপরাধ হয়েছিল, আজকে তোমারও অপরাধ হয়েছে, সুতরাং আমি কিছুতে সমাধান করতে পারবো না। কিন্তু ভগবানের যে পরিকর তার নিজজন রয়েছেন, তাদের যদি আমরা আশ্রয়ে যেতে পারি তাহলে এই অপরাধ কিভাবে মোচন হবে সে বিষয়ে কিছু আমরা জানতে পারি। তিনি তখন পরামর্শ দিলেন, ভগবান অত্যন্ত গো গোপ গোপী সমস্ত ব্রজবাসী তাদের অত্যন্ত প্রিয় ভালোবাসেন, তার মধ্যে কৃষ্ণ নিজে গোবৎস পালন করেন, নিজে গোবৎস সেবা করেন, তাদেরকে চরান, তাদেরকে লালন পালন, তাদের নানা রকম ভাবে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং সেই গোগণকে যদি প্রসন্ন করা যায় তাহলে ভগবান কিছু তোমার প্রতি প্রসন্ন হতে পারে। তাই সমস্ত গোগণের যিনি মাতা সুরভি দেবী, সেই সুরভি দেবী সুরভি গাভীকে তিনি সেখানে গিয়ে তার অপরাধের কথা যখন জানালেন, সেই সুরভি দেবী তাকে সঙ্গে নিয়ে এবং ব্রহ্মা সহ ইন্দ্র ভগবানের নিকটে এসে কৃষ্ণের নিকটে এসে তার অপরাধ স্বীকার করে নানা ভাবে তাকে স্তবস্তুতির দ্বারা বিশেষ সন্তোষ বিধান করলেন, এবং এই স্থানে তিনি সমস্ত ওই সুরভি দুগ্ধ ইত্যাদি এবং আকাশ গঙ্গা ঐরাব কুণ্ড ইত্যাদি সেখানে জল সমস্ত নিয়ে এসে ভগবানকে অভিষেক ইত্যাদি করলেন। অভিষেক করে ভগবানের এক নাম এখানে হলো গোবিন্দ, গোবিন্দ তিথি সমস্ত গো গো গোপী গোপ বালক সমস্তকে তিনি নানা ভাবে নানা প্রকারে লীলা বিলাসের দ্বারা সমস্ত কে তিনি আনন্দ বিধান করেন, আনন্দ পান, এবং গো গা শব্দে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়কে তিনি ঋষিকেশ ইন্দ্রিয়কে তিনি আনন্দ প্রদান করেন, সেই ভগবান গোবিন্দ এই নামে তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেই থেকে ভগবানের নাম হলো গোবিন্দ, ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম নাম, এই জন্য এই স্থান গোবিন্দ কুণ্ড নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আজ থেকে প্রায় 600 বৎসর পূর্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বসূরী পরম গুরু ঈশ্বর পরিপালের দীক্ষা গুরু ঈশ্বর পরিপাল মহাপ্রভুর বাহ্যত তার যে গুরুদেব মাধবেন্দ্র পরিপাল, তিনি এই স্থানে কোন এক সময়ে ব্রজে এসে এক বৃক্ষ তলে যখন ভজন করছিলেন এবং হে দেব হে দলিত হে ভুবনৈক বন্ধ হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধু ইত্যাদি নানা ভাবে বিলাপ করছিলেন, ওই দিন দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদি যখন তিনি সেখানে রোদন করে অত্যন্ত বিলাপ করছিলেন কৃষ্ণ বিরহে বিরহী হয়ে, তিনি এমনই এক অতিমর্ত চরিত্র যাকে মহাপ্রভু প্রেম কল্প ব্রজ প্রেম কল্প স্বরূপ অঙ্কুর স্বরূপ বা বীজ স্বরূপ বর্ণনা করছেন, এবং তিনি সেখানে যখন ভজনা করছেন এবং তিনি এমনই এমন এক মহাপুরুষ, তিনি মেঘ দেখলেও সেই মেঘের রূপ নব ঘনশ্যাম ভগবানের স্ফূর্তি হয়, ভগবানের স্মরণ হয়, তিনি তখন উন্মাদগ্রস্ত হন, এবং ময়ূরের পাখা ইত্যাদি ময়ূরকে দর্শন করলে নদী দর্শন করলে তার ইষ্টদেবের স্ফূর্তি হয়। তিনি সেখানে যখন বিরহে ভজনা করছেন সেই সময় তিনি অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন, যদি কখনো স্বাভাবিক ভাবে কারোর কাছে যাচ্ছে না করে যদি কিছু আহার আসে তবে তিনি গ্রহণ করেন, নতুবা তিনি গ্রহণ করেন না, কারোর কাছে কোনোদিন ভিক্ষা ইত্যাদি নিজের জন্য প্রসাদ করেন না, এমনই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলেন। তিনি এইভাবে যখন নিরাহারে দু তিন দিন ধরে সেখানে ভজনা করছেন, তার দেহ স্মৃতি কোনো জ্ঞান নাই, কখনো একটু একটু করে তিনি শব্দের মতন ওই নিদ্রা অর্থাৎ চারিদণ্ড ভগবানের লীলা স্মরণ লীলা দর্শন ইত্যাদির দ্বারা তিনি নিদ্রা অবলম্বন করতেন। সেই সময় সন্ধ্যা কালে একটি অত্যন্ত গোপ বালক পরম সুন্দর দিব্য মূর্তি তিনি একটি পাত্রে মাটির পাত্রে কিছু দুধ সংগ্রহ করে নিয়েছে, বলছেন বাবা তুমি এখানে বসে থাকো, এখানে কেন কান্নাকাটি করো, কেন দিন রাত রোদন করো, কার জন্য রোদন করো, আর তুমি কখনো কারোর কাছে যাচ্ছা করো না কেন ব্রজের মধ্যে, এখানে তো কেউ অভুক্ত থাকে না, এখানে তো সকলকে ব্রজবাসীরা আহার প্রদান করে থাকে, তুমি কারোর কাছে যাচ্ছা করো না, তুমি কিরকম আমরা তো কিছু বুঝতে পারি না, তো এই সামান্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছি এইটা তুমি পান করো, আর আমি এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গরু বাছর গুলোকে সব রক্ষা করতে হবে, এখন দুধ দেওয়ার সময় আমার এখন সময় নাই। তখন বললেন তুমি জানলে কি করে, আমি যে অভুক্ত কি আমি আহার করেছি করিনি তুমি জানলে কেমন করে, তো বললেন এই ব্রজবাসিনীগণ তারা স্ত্রীগণ মায়েরা তারা এখানে সমস্ত পাশে জল নিতে এসেছিল, তারা এসে জানলো যে তুমি অভুক্ত তাই আমাকে পাঠিয়েছেন, অতএব তুমি এটা গ্রহণ করো, আমি ঘুরে এসে আমার কাজ সামলে নিয়ে আমি তোমার আবার এই পাত্র নিয়ে যাব, বলে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু ভগবানের সেই রূপ পরম মনোহর রূপ দর্শন করে তার সমস্ত ধ্যান তার সমস্ত স্ফূর্তি সব দূর হয়ে গেল, এখন কেবল সেই বালকের চিন্তায় তিনি বিমূঢ় হইয়া রইলেন, কখন সেই বালক আসবে, কেন আসছে না, তিনি চিন্তা করতে পারছেন না কেন এইরকম আমার স্ফূর্তি হচ্ছে আজকে। এইভাবে যখন রাত অধিক হয়েছে
আর দুধটা খেয়ে কি
দুধটা পান করে সেই পাত্রকে রক্ষা করে রেখেছেন বা সেই বালক এসে নিয়ে যাবে এই অপেক্ষা করছেন, যখন শেষ রাত্রি তখন তিনি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন তখন দেখছেন কি সেই পরম মনোহর সেই বালক এসে তাকে হাতে ধরে নিয়ে বলছেন দেখো আমি মৃত্যুগণের আক্রমণে আমি এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম শ্রীজি গোপাল রূপে, কিন্তু মৃত্যুগণের আক্রমণে আমার এই পূজারী এই কুঞ্জের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত গুপ্তভাবে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল, আমি তোমার পদ চেয়ে বসে আছি কবে মাধবেন্দ্র আসি করিবে সেবন, তাই তুমি আমাকে সেইখান থেকে উদ্ধার করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে আবার আমাকে বিশেষ সমারোহে পূজা ইত্যাদি সব প্রবর্তন করো। তখন পরবর্তীকালে যখন সকাল হলো তখন সমস্ত গ্রামবাসী ব্রজবাসীকে তুমি আহ্বান করে তোমরা সকলে দেখবে এসো, তারা সমস্ত কোদাল কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে এসে কুঞ্জ পরিষ্কার করে সেইখানে দেখলেন কি যে মাটির তলায় সেখানে এই শিলাজি অর্থাৎ মাধবেন্দ্র পরিবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন গোপাল দেবকে, বজ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত গোপাল তিনি সেখানে বিরাজ করেছেন, তাকে সেইখানে নিয়েছে সেই মন্দিরে সেখানে স্থাপনা করে সেখানে পুনরায় আবার অন্নকূট, যেমন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র অন্নকূট অন্নের কূট ইত্যাদি সমস্ত রাশি রাশি ভোগ সেখানে ভোগ লাগিয়েছিলেন, তেমনি মাধবেন্দ্র পরিপাক সমস্ত ব্রজবাসীদের দ্বারা উপনীত সমস্ত নৈবেদ্য দিয়ে আবার পুনরায় তিনি আবার অন্নকূটের মতন বিশাল ভোগ এবং ভোগ লাগানো পরে তিনি দর্শন করলেন যে সমস্ত বহুদিনের ক্ষুদায় গোপাল খাইল সকল মাধবেন্দ্র পরিপাক উপলব্ধি করলেন, তিনি দেখলেন কি সেই গোপাল তিনি নিজে হাতে সব খেয়ে নিলেন আবার পুনরায় সমস্ত পাত্র পরিপূর্ণ করে দিলেন, তিনি পরিপূর্ণতম তত্ত্ব তার থেকে পূর্ণ গেলেও পূর্ণই থাকে, সমস্ত পাত্র পূর্ণ হয়ে গেল সমস্ত ব্রজদের বাসীগণকে তারা সমস্ত সব দান করে দিলেন প্রসাদ বিতরণ করলেন, এবং এইরকম এক মাস ধরে সমস্ত ব্রজবাসীগণ এক একজন নানা রকম ভাবে সব অন্নকূট করতে লাগলেন, রাশি রাশি দুধ দই মাখন রুটি কচুরি পুরি লাড্ডু ইত্যাদির দ্বারা রোজ রোজ তিনি অন্নকূট করতে লাগলেন, তিনি আবার সেই মন্দির সেখানে স্থাপনা করে সেখানে বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করে সমস্ত পূজারীকে যখন আবার প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরবর্তীকালে তিনি আবার বললেন আমি বহুদিন কুঞ্জের মধ্যে ছিলাম আমি অত্যন্ত তাপে দগ্ধীভূত, তুমি আমার জন্য কিছু চন্দন নিয়ে এসে আমার তাপ নিবারণ করো, পরবর্তীকালে অন্য বক্তা
the history of Govinda Kunda, what he told.
Patrubhyascha, Vipasandrubhyevicha, So this morning while we were performing Parikrama, which is Vishak Govardhan, we came to Govindakund, which is a very prominent pastime place. After Indra Dev had tried to destroy the whole of Braj, tried to destroy Krishna, who was actually the Supreme Personality of Godhead, the origin of Indra's worshipable deity, tried to destroy all the beloved cows, calves, trees, cowherd boys, all the elderly gopas and gopis, and all his beloved darling sweetheart gopis. So Indra, for 7 days, he was raining torrential rain with drops like elephant trunks and thunderbolts. So at that time, Krishna, with his left pinky, he was holding Giriraj Govardhan aloft, and Giriraj Govardhan was feeling these thunderbolts like flower petals. And Indra's messengers, first of all, reported that all of, from the top, they were saying that all of Braj has been destroyed. There's not even an ant is remaining. After 7 days, Indra sent another messenger. And the messenger said, oh, because he came down and he saw there's a great dust storm underneath because everybody was dancing in ecstasy and chanting in Krishna's glories. So he came back and he said, actually, not a single ant in Braj has been inconvenienced. They're enjoying like anything. They have beautiful palatial living places under Giriraj Govardhan. They have sumptuous food. They're all gazing at Krishna very, very happily. Indra realized his mistake and he came down. He understood that he committed a very, very grave offense. Brahmaji, he'd stolen the cowherd boys and the calves. He hadn't tried to kill anybody. Indra had tried to destroy the whole of Braj, which is Krishna's eternal abode. He realized he committed a very serious offense. Brihaspati couldn't help it, so he went to surrender to Brahmaji. And Brahmaji said that the cows are very dear to Krishna, so you should take shelter with Surabhi Devi. So Indra Devi went with Surabhi Devi. Surabhi Devi prayed on Indra's behalf that Krishna would forgive him for the offense. So then, after this, Indra and the demigods had a huge abhishek of Krishna, very, very gorgeous abhishek. And Krishna more or less tolerated the abhishek. He was quite bored, actually. But finally, after all the demigods had gone, then the cowherd boys came and he was playing with his cowherd boyfriend. So at this place, Govindakund, he was given the name Govinda. Because, actually, he is the one who was protecting goats. He was protecting the cows, he was protecting the gopis, he was protecting the gopas, he was protecting the land, everything. So Indra himself gave him his eternal name, Govinda. In the past times, he gave him his name, Govinda. So Puttaprak Puri Maharaj, he's also described the pastimes of Madhavendra Puri in this area of Govindakund. On the top of Giriraj Govardhan, we can see an old temple. And this is where Gopalji came, was established. Madhavendra Puripad, he's Param Gurudev of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he is the sprout of praying in our Guru Parampara. Before Madhavendra Puripad, nobody had this bright praying. He was such an ecstatic personality. He would wander here and there. He didn't know if it was day or if it was night. He would never beg, even. If somebody gave him food, he would accept. Otherwise, he would just survive. So one day, he came to Braj, and he was in this area, and he was chanting, remembering the pastimes of Krishna, crying and weeping. So a young boy came, extraordinarily beautiful young boy came. He said, oh, Baba, why are you fasting here? Nobody fasts in Braj. We don't like people fasting. My mother told me, or the village ladies, they saw you sitting here not eating anything. So my mother has sent me with some milk for you. You take this milk. So they put the milk with Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, he began chanting again. But he couldn't forget this beautiful boy. And he says, I've never been attracted by anybody in this world before. Why can't I forget this boy? After some time during the night, he drank the milk. And he became so ecstatic on drinking this milk. So after some time during the night, he dozed lightly. Madhav went to Puripad, he was sleeping very, very little. Srila Gurudev this morning, he told us we should just chant four or five, we should just sleep 4 or 5 hours at night. Madhav went to Puripad, he was sleeping at most 1 hour 48 minutes while Radha Krishna resting at night. So he dozing, and the same boy came in the dream. Madhavendra Puri, I've been waiting for you so long. So this is Gopalji. Gopal was established by Vajana. But then when the Muslims came, and they were perpetrating their atrocities, were killing so many brahmanas, destroying the deities, so the Pujari buried Gopalji. So now Gopalji said, Madhavendra Puri, you have to come and you have to get me out. I want you to serve me. Krishna likes to accept the service of his very confidential devotees, so he'd been waiting for Madhavendra Puri to come. So when Madhavendra Puri woke, he realized, oh, that boy that I saw, he was my Lala, he was my Kanai. He was my worshipful Krishna. So then he assembled the local Brajbasis, and they went to the place where the deity had indicated, and sure enough, they found a beautiful form of Gopal there. So he brought out, we can see at the bottom, there's his Madhavendra Puripad's Vaita is there. And there's a place where Gopalji was first established. Then later on the top of Giriraj Govardhan, he established Gopal. And all the inhabitants from the local villages, one day after another day, after another day, after another day, merchants from Mathura, all the villages around, they would come and in turn, they were performing ankur for Gopal. And then we know that after some time, Gopal told him that, oh, I've had so much nice food, but still my body is so hot, I was buried for so long, you have to get sandalwood. So this is a long story, how Madhavendra Puri went to Puri, towards Puri to get sandalwood. So when Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, they would journey towards Puri. So Nityananda Prabhu was relating his pastime to Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu became so ecstatic to hear the qualities of Madhavendra Puri. So these are some pastimes connected with Govinda Puri. Hare Krishna.
Govinda Kunda Pasi.
Purvei. Anno Grame. Gauri Kunda.
Gauri Kunda itihas bolte parbo tumi.
Gauri Kunda.
Why do you almost go up? প্রত্যেকের প্রতি চরণের যথাযথ সম্মান
জানাচ্ছি। জোর করে বলো,
পরম পূজ্যবাদ শ্রীল মহারাজজি মানুষ আদমের প্রতি এক অনুজ্ঞা রেখেছেন, যাকে কেন্দ্র করে একান্ত শক্তি সামর্থ্য হওয়া সত্ত্বেও কিছু বলার প্রয়াসে ব্রতী। প্রথমেই মনে পড়ে পরশ মনিবিষণে লৌহ অঙ্গ পরশনে সেলৌহ কাঞ্চন হয় প্রমাদ বচন। আপনারা পরশ কথনের নাম শুনে থাকবেন, যার সান্নিধ্যে বা স্পর্শে লোহাও মূল্যবান সামগ্রী রূপে পরিণত হয়ে থাকে। এই তাবৎকাল শ্রী শ্রী ব্রজমন্ডল পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে পূজনীয় বৈষ্ণবপ্রেমীদের অনুজ্ঞায় আমরা বিশেষভাবে শ্রী গোবর্ধন তটভূমে শ্রী গৌরীপুঞ্জের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি। আপনারা প্রত্যেকেই এ সম্বন্ধে কম বেশি কিছু না কিছু জানেন। পড়া দিতে হবে, সে কারণে আমার মাস্টার কাছে দাঁড়ান। গোবর্ধনের পাদদেশে শ্রী গৌরীকুণ্ড নামে যে স্থান, সেখানে মানসিক দণ্ডবত প্রণতি করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম। গৌরী শব্দের মুখ্য এবং গৌণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যেমন গো শব্দে আমরা পেয়েছি তত্র গৌরী মুখ্যত শ্রীমতী রাধারানীকেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ কারণ রাধারানী বিভিন্ন বিলাসাদিকে কেন্দ্র করে এই কুণ্ডের তীরে যে সকল নানান বা রকমারি বিলাস, সেই বিলাসকে পুনঃপুন একান্ত অসমর্থ এবং অনধিকারী এ কথা জানিয়েই এটি বাঞ্ছা কর্মোত্তর ভূষণ ভয় বছর পতিতানাং পাবনেভ্যো।
শুধু ভূমিকা
তুমি বলতে পারো
হিন্দি
হিন্দি
সব ইংলিশ বলছে
বলো, অন্য লোক বলতে পারছে
প্রতিবঞ্চনার জন্য ওখানে গৌরীকুণ্ডের বাহানা, ওখানে গৌরী পূজার বাহানা, ওখানে গৌরী পূজা করতেন।
And Chandravali was surrounded with Padma and others. And Radhika waiting in Surjakund. And Krishna is, he told him, come, he is not coming, coming. What is the cause? Why is he not coming? So, Radhika sent her maid servant, Rupa Manjali. So, prior to that I want to say, that in Guru Vastak we have seen one slope. নিকুঞ্জ জীবন রতিকে সিদ্ধই যা যাবি যুক্তির অপেক্ষা নিয়া তত্ত্বাদি দাসা দতি বল্ল ভস্য বন্দে গুরু শ্রী চরণ অরবিন্দ আবার গুরুবর্গ দে অলওয়েজ ডিসকাসিং হাউ টু অ্যারেঞ্জ টু মিটিং অ্যাবাউট মিটিং কনজুগাল সো দে আর ডিসকাসিং ইচ আদার সো রূপমঞ্জরি অ্যান্ড আদার মঞ্জরিস like Gobanga Manjari, Rati Manjari, Raman Manjari, Rag Manjari, etc., etc. They discussed and sent Rup Manjari. What they discussed? When Radhika, Chandavali was surrounded with other sakhis and Krishna was there, they're joking, talking each other, making fun. The meantime, Rup Manjari entered that kunja and telling, oh, save me, save me, save me, save the brooch, save the brooch. And saliva come down from his mouth, tear come down. Big, big danger. All become surprised. What happened? Then I see trembling. Something want to say, I became very scared. This is all Mahboy, Mahboy. Don't fear, don't fear. Please tell what is the fact. Then Rukmanjari told that in front is a big danger. This is what happened? And a big demon entering the calf and hook up with this to go to him because the demon is form of calf. Who is going? He is smelling and opening his mouth and taking his tail top and running from there. Unless until you know go immediate, all calves will be finished up from the brooch. Then Krishna says, where is that? Then she directed towards Radhakund. This is understood. He said, let us go. No, I will not go there anymore. You are so powerful. You have no problem, but if that demon knew that I have told you that he will kill me first, I will not go. She is making drama such a way. Chandavali, Padma, they could not understand at all. Padma said, okay, you can show from far distance. Then Rupanjali told, scratching her, okay, I can show from far distance, but not going to close at all. This is my condition. Okay, then Krishna and Rupanjari is coming. Then Rupanjari told, okay, today you got a red-handed. I will give you a good lesson to go to Swaminiji. Then Krishna folded his hand, oh, please don't tell your Swaminiji. Then Rupanjari told, only folding is not sufficient. Then Krishna told, oh, I will surrender to you and catch hold your feet. Then she told, okay, if you surrender to me or catch hold my feet is not sufficient. You have to surrender and catch hold feet of my Swaminiji. Unless until you not catch hold feet of Swaminiji, none can protect you. So by their talking and going to Radhakund, the Rukmanjari told to Radhika and Krishna surrendered completely himself to lotus feet of Radhika and asked forgiveness from in future, from today I will not do anymore. So which I have heard from as before in the middle of 80s, we went there twice with Gurudev with some ISKCON devotees. So which I have heard from Srila Gurudev, which I have memorized. I present to you, if any faults, please excuse me. And if anything nice, then you can think this is ready to go to Gurudev.
जिस प्रकार से राधा जी सूर्य पूजा के लिए सूर्य कुंड में जाती हैं और वहीं पर कृष्ण से मिलन होता है, बहुत सुंदर प्रकार की लीलाएं होती हैं, उसी प्रकार से घर से बहाना बनाकर गौरी पूजन के लिए, पार्वती जी के पूजन के लिए चंद्रावली वहां आती थी और अपने सखियों से कृष्ण को वहां बुला करके उन दोनों का मिलन होता था। इसी तरह से एक बार कृष्ण चंद्रा पद्मा इत्यादि सब सभ्य इत्यादि सखियों के साथ में विलास कर रहे थे, उधर राधा जी कृष्ण के विरह में बड़ी तप्त हो रही थी, दुखी थी। उन्होंने रूपमंजरी को भेजा, देखो कृष्ण कहाँ है और छल बल कल करके किसी प्रकार से उनको हमारे कुंज में ले आओ। रूपमंजरी वहां गई उस कुंज में, गौरी कुंज में, और देखा सब के बीच में कृष्ण वहां है। कृष्ण से बोली, आज ब्रज में बड़ी भयंकर विपत्ति आई है, एक कोई असुर समस्त ब्रजवासियों को, गायों को, बछड़ों को मार रहा है, जल्दी से बचाओ नहीं तो वो सभी मर जाए। कृष्ण सुनते ही चंद्रावली से कहा, देखो ये मैं अभी तुरंत उस असुर को मार करके आता हूं, कोई चिंता मत करना, अवश्य ही आऊंगा। ये कह करके रूपमंजरी के साथ में राधा जी के कुंज में गए। इस प्रकार से रूपमंजरी ने चातुरता पूर्वक उन चंद्रावली इत्यादि का वंचन करके कृष्ण से मिलन कराया। ये गौरी कुंड की कथा है संक्षेप। पास ही में संकर्षण की गए, पहले ही गोविंद कुंड से पहले वहां इतिहास क्या है जानते हो?
और फिर कृष्ण के माना असर हो
কিন্তু ললিত মাধব নাটক হয়েছিল রূপ গোস্বামী পাঠ কি সন্দর্ভে বর্ণন করতে হেন যে রাধা বিবাহ
धनिष्ठा
के हाथों में दे दिया क्योंकि
वो उनके पास में जाती आती रहती थी और धनिष्ठा जी ने ये
राधिका जी को उपहार दिया। इस प्रकार से यहाँ पर लीला हुई थी, शंखचूड़ का वध हुआ था और बलदेव जी ने उनकी रक्षा की थी और कृष्ण ने मार करके जहां पर वो मणि दी थी इसका नाम बलदेव कुंड या शंकरसर।
पासी में आनर गांव है,
इसलिए आनर गांव है।
कैन यू स्टिल वाई आनर इन ब्रीफ?
So we are discussing to speak about Iowa. This is a place in the same approximate area as the Vindicorn and Sandershaw Court, where the pastime of the of all the Calvin people, Nanda Baba and Krishna, where Nanda Baba was preparing for the great sacrifice to the Lord in India. One morning, Mother Yashoda was seen to be cooking many, many elaborate and wonderful preparations. And Krishna was asking her, what are you cooking for? Is it some special festival? Is somebody's birthday? What is the occasion? And she was a little busy and didn't want to be bothered, so then he went to Nanda Baba. And Nanda Baba, also thinking that Krishna was young and would not be able to understand, was not immediately explaining to him what the activity was. But then after a short time, he began to explain that actually we are doing puja for Indra Day. Because of Indra, we worship him and he gives us rain. And by rain, the grass is grown and the cows are nourished. And we are cowardly people. We depend upon the cows for making our livelihood. So we are dependent on Indra and therefore we worship him. And then in a very elaborate and fascinating way, Krishna began to give different kinds of very complex arguments to defeat Nanda Baba's purposes and justification for worshiping Indra. Ultimately, he convinced them that Govardhan is the actual source of our livelihood. Govardhan is the source of the water, the grasses, all the fruits and flowers, and everything that Raj Vasi is dependent on comes directly from Govardhan. You've never seen Indra. He may or may not be there. People that don't even worship Indra, they also get rains. The ocean gets rain. Nobody in the ocean worships Indra. Simply worship Govardhan, who we know is here and who we can see. And so, because of the beguiling, charming, and very strong arguments, everyone was persuaded. And they took all the paraphernalia that was to be offered to Indra, and they began worshiping Giridhara's Govardhan. Now, we've heard the pastime of Indra's reaction, but before that, all the cavernous people were assembled, and they filled this area. Actually, there were so many carts filled with prasadam, they practically circled Govardhan with so many carts. So much prasadam was there. And just as Krishna had predicted, Giridhara's Govardhan manifested himself in front of the entire assembly and began to eat the offerings. Surprisingly, Giriraj, although he was very gigantic, he looked an awful lot like Krishna himself. But because of yoga maya, I don't think anybody really noticed that, but actually Giriraj looked exactly like Krishna. And with his large arms, he was eating everything. And as he began to eat, gigantic stacks of enough chapatis to fill this entire room. Hundreds of times. There was kheer, there was raw spula, there was kachoris, there was samosa. Every delectable item that you can imagine was there being offered in huge, 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 huge quantity. And he was eating it all. And he was saying, Ayur! Ayur! Bring me more! Bring me more! Ayur! So then he ate everything. And he was still shouting, Ayur, and then they said, oh, Giridhara Maharaj, we have nothing left. We've given you everything. And they offered him a little tulsi and jamuna water And he said, yes, now I am satisfied. So, so this was that place. And then afterwards, of course, Indra in his rage came and laid down rains and Michael passed by the same place. But this was Sarayor. This town is named Sarayor after that pastime.
Thank you. Brihat Bhagavatamrtam. Krishna गौओं को चराते हुए वंशी वादन कर रहे हैं. गोपियां अपने भाव के अनुसार में कह रही हैं, ओह ये हिरणियां धन्य हैं जो अपने पति मृगसार को साथ में लेकर के कृष्ण सार को लेकर और आंखों से प्राणी की कृष्ण से भिक्षा मांगती हैं. और भी तो बात कहो क्या, दिवंगनाएं भी अपने पतियों के साथ में विमान में चढ़कर के कृष्ण की इन लीलाओं को दर्शन कर रही हैं. रासलीला कृष्ण का रूप देख रही हूं, कई बंसी वादन सुनकर और पतियों के गोद में ही मूर्छित होकर के गिर रही हैं. अरे गाय बछड़े कृष्ण की बंसी सुन करके कानों को इस प्रकार से करके अमृत जैसा पान कर रहे हैं. गाय तीर्ण मुख में लेकर न भीतर जाता है न बाहर आता है, यही पर मुख में पड़ा रहता है. और गायों के बछड़े क्या करते हैं, उस अमृत नाद को सुनकर विभोर हो जाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और माया का दूध बस गले में ही रह जाता है, न भीतर ले जाता है न बाहर ले जाते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं आनंद की मारे. अरे ये तो चलने फिरने वाले ये जीव जंतु हैं. अरे नदी को तो देखो ये कैसी है, अभी बतलाएं. और नदी की बात क्या है, ये आकाश में छाने वाले जो बादल है इनको देखो. दिष्टातपे ब्रजपशून सहराम गोपी संचारयन्तम अनुमेरुम देर्यन्तम प्रेम प्रबद्ध उदित कुसुमावली भी सखु बधात सपत बपुसांबुद आत्पत्र. ओह देखो तो कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं. गाय बछड़े गाय कहीं इधर धूप में जा रही है कहीं उधर धूप में जा रही है, उनको धूप धूप तो लगती नहीं, पैरों में तो उनके कटक और ये सब कुछ लगते नहीं. जब धूप हो जाती है कृष्ण जब जाते हैं आकाश में ये मेघ छा जाते हैं. ओ हमारे समान ही ये श्याम है, कृष्ण ही श्याम है और हम भी हैं, हम दोनों सखा है. सखा को कोई कष्ट न हो धूप से, इसलिए ऊपर में छा जाते हैं और शीतल बूंदे मन प्रेम से बढ़ने के कारण रोक नहीं पाते हैं अपने प्रेम को. आंखों से आंसू के बूंद मानो शीतल शीतल टपकने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी वर्षा होने लगती है. ये वर्षा नहीं बल्कि उनके नेत्रों से आनंद के आंसू है, इस प्रकार से वर्णन कर रही है. ओ, ये मेघ भी कृष्ण की सेवा करते हैं. हम ऐसी दुर्भागा जो कृष्ण की सामने नहीं आ सकते. पति यदि सुन ले तो हमें घर से निकाल दे, न जाने क्या क्या करेंगे. और मेघों को देखो तो स्वच्छंद रूप से सब समय जहां जहां कृष्ण जाते हैं तहीं तहीं उनके छत्र के रूप में सेवा करते हैं. गोपियों का रहस्य भी दूर हो
काम की इतनी प्रेम की इतनी उनके हृदय में वृद्धि हुई, कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कंठा हुई। उसको नदी के बहाने, जमुना नदी के बहाने अपने भावों को व्यक्त कर रहे थे और यही पर उनका खुल करके, अभी तक तो जो कर रही थी छिपा करके अपने मनो के भाव, अब यहाँ पर खुल करके स्पष्ट रूप से उनके भाव ऊपर आ रहे हैं। नदस्तदात अरे सखियों, पशु पक्षी तो चेतन प्राणी है, ये अचेतन जमुना भी नदियां भी कृष्ण की बलसित ध्वनि सुनकर अपनी तरंग रूप भुजाओं से कमल के पुष्पों को लेकर उपहार के रूप में कृष्ण के चरणों में प्रदान करते हैं, जैसे कि कृष्ण के चरण कमल उन कमलों से छिप जाते हैं। अरे देखो तो ये भौरे पड़ रही है, भौरे नहीं है, उनका काम बेग है जो टूट जाता है। कृष्ण की बंसी सुन करके नीचे की तो झारा जो जा रही थी अब ऊपर की तरफ में मुड़ गई, लौट आई, और ऊपर वाली जो थी वो ऊपर वाली भी जा रही है इधर से, तो जाए कैसे, बस वही प्रभाव, ये काम बेग है का। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं बाह्य दृष्टि से जमुना मानसी गंगा इत्यादि नदियां अचेतन है, किंतु जमुना को अचेतन नहीं कहा गया, गिरिराज को अचेतन नहीं कहा गया। जमुना की अधिष्ठात्री देवी विशाखा है, इसलिए ये अचेतन नहीं है, इसलिए कोई सखी पहले की भांति करी, अरे सखियों जमुना और मानसी गंगा इत्यादि नदियों विशेष करके उनमें सर्वश्रेष्ठ जो प्रियतमा कालिंदी है उनके लिए सभी नदियों का भाव आ रही है। जमुना के लिए नदी इत्यादि कहा, किंतु इसको समझो जो ब्रज में जो नदियां सरस्वती इत्यादि तब लुप्त हो गई हैं, मानसी गंगा है। ये मानसी गंगा ऐसे एक सरोवर नहीं था, गंगा की एक धारा यहां आकर के मिलती थी, इसलिए ये समस्त नदियों में कालिंदी के लिए ये सभी का कारण। जब कृष्ण की मुकुंद की परम सुखमयी वेणुनाद जब सुनती है उसको श्रवण करके और कानों के द्वारा हृदय में ले जाती हैं, तब उसी क्षण में भंवर के छल से काम बेग की टूटी तरंगे होने लगती, इतना उनके अंदर में प्रेम अथवा काम बढ़ जाता है कि कृष्ण से मिलन के लिए उनमें तरंगे भंवरे बन जाती हैं। विशेष बात है जब कृष्ण निकट में आए हैं, जमुना नदी अपनी तरंगों से निकट पहुंच गई और पहुंचते पहुंचते उनको वत्सल तक पहुंच गई और कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु कृष्ण आप्त काम उसका कुछ महत्व नहीं दिया, इसलिए जमुना जी लज्जित होकर के फिर क्या की, तरंगों में नीचे आ गए और अपने में होने वाले कमल के फूलों को अपने तरंगों से लेकर, और वस्तक्षण तो नहीं कर सक, आलिंगन तो नहीं कर सकी, किंतु उनके फूलों के उपहार से कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं। इसलिए अथवा मुकुंद की घी की जो लक्ष्मी संपत्ति है, भौरों की भ्रमर की धारा, भंवर की धारा, भौर माने गोलाकार, जबकि नदियों में बाढ़ आती है, तरंगे आती हैं, तो उधर की नर का पानी नीचे वाला ऊपर आने लगता है, ऊपर वाला नीचे जाना, तो भ्रमण बढ़ जाता है। ऐसे ही कृष्ण के प्रेम रूपी तरंगों से, काम रूपी तरंगों से यमुना के हृदय में भौर आ जाती है। इस तरह से वे सब नदियां अपनी तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरण कोमलों का आलिंगन कर अपने हृदय रोग को शांत करते हैं। अथवा आलिंगन जब करती हैं तो उनका वेग थम जाता है, रुक जाता है, तब विफल होकर के केवल चरण कमलों को ही धारण करके अपनी तरंगों से और कमलों का उपहार देने लगती है। अथवा कमला, कमला से कमल हुआ, अर्थात लक्ष्मी जी की भी उपहार पूजनीय है। कौन? ये गोपियां, जमुना। इस रीति के अनुसार में सब नदियां लक्ष्मी जी की भी परम पूजनीय है, अथवा लक्ष्मी जी से भी ये नदियां कालिंदी इत्यादि अधिक सौभाग्यशाली है। ये नदियां कृष्ण के मोहन बंसी को सुन करके हसा अपने समुद्र जो पति है उधर नहीं जाती। सरत पति समुद्र को कहा जाता है, मानो ये भी उपपति कृष्ण के चरणों में ही लग जाती है, अपने पति को जा तरफ जाना छोड़ करके कृष्ण की तरफ में मुड़ आती। और दिव्य उपहारों से, दिव्य उपहार क्या है? फूल है, कमल का फूल कृष्ण के चरणों में अर्पण करती है। इस प्रकार से नदियों की महिमा कर रही है। आगे और भी सुंदर से सुंदर भाव ग्रहण कर भजन करते समय इन लीलाओं का स्मरण करो। यदि संभव हो तो अधिकारी हो, मन इधर उधर न जाए। जीवन दो दिन का है। आज बड़े दुख का समाचार प्राप्त हुआ। वृंदावन में हमारी एक शिष्या थी जो दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में हेड ऑफ थी, नर्सों की थी। कौन से वहां थी? अनेक वर्षों से हमारे आश्रम में आकर के वृंदावन में रहती थी। बड़ी सुंदर भक्त थी, उसके भाव बड़े सुंदर थे।
हम लोग ले जाते तुम्हारे।
वो कभी व्रत छोड़ करके जाती नहीं थी और हमारे सब परिक्रमा में योगदान करती। कल हमें समाचार मिला,
आज आज
आज अच्छा कल मिला, कल नहीं परसों हमारे, परसों हम आ रहे थे तो हमको उमा ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, आपका दर्शन करना चाहती है। हमने सोचा साधारण सी बात होगी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पीछे हम देख लेंगे, उससे भेंट कर लेंगे। उसकी तबीयत खराब होने पर उसको दिल्ली ले गए लोग और दिल्ली में ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए हम सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करें, श्री श्री राधा गोविंद जी हमारे गिरिराज जी उसकी आत्मा को शांति दें और भजन राज्य में वह अग्रसर हो सके। ये इन लोगों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी ऐसा ही प्रार्थना करें। और मैं समझता हूं सुखद मृत्यु हुई, अधिक कोई कष्ट नहीं। और वृंदावन की चिंता करती हुई मेरी चिंता करती हुई इस कार्तिक के महीने में वो गई है, इसलिए भगवान उन पर कृपा करें। आज यहीं तक हम लोगों की कथा रहेगी।
So... dependency, we have Bhagavatamrita, that she's not performing. We hear at the time that when Vishnu was calibrating, that time he plays his flute. At that time, the gopis, full of devotion, full of loving sentiments towards Krishna. In their meditation, they are saying what? Oh, how fortunate are the deer. They are going to meet Krishna along with their husbands who are Krishna's side, who accept Krishna as everything. Even the ladies in the heavenly planets are fortunate. Because on the lap of their husbands seem to be the Krishna, they are falling unconscious. But we are most unfortunate. Even the cows, taking grass in their mouth and hearing the nectar of Krishna's fruit, they are not chewing the grass, nor is the grass falling from their mouth. And the calves drinking their mother's milk, when they hear the nectar of Krishna's fruit, then their eyes become closed and full of tears. They neither drink the milk nor spit it out. What to speak of the moving animals like the deer and the cows? Even inert things like the river are rushing towards to meet Krishna. The clouds in the sky are thinking, Krishna is also dark complexion like us. Therefore, he is like our sakha, our friend. And weeping tears of happiness, of prema, those tears fall as a very cooling mist on Krishna. Alas, the gopis say, even the clouds are serving Krishna. Even the clouds are serving Krishna. But we are dearer to him than the clouds, but we cannot serve him. Alas, if our husbands hear us even talking of Krishna, then they will expel us from the house. Thus the clouds serve Krishna like an umbrella. The gopis are seeing their own greed to meet Krishna, even in objects like the rivers. Before their mood, they were concealing, but now it's expressed most openly. Alas, Saki, even moving and unmoving, even conscious animals like birds and cows, they have consciousness. But even unconscious entities like the river, how she is offering her lotus flowers to the feet of Krishna and her waves on her hands. Alas, Krishna's form is so beautiful. The water that has passed does not wish to continue going away from Krishna, therefore it stays there for his darshan. And the water that is coming down the river has nowhere to go, therefore it simply moves in a whirlpool shape. But that whirlpool, what is that? That is calm bay, the force of the river's desire to serve Krishna. Sri Sanatana Goswami says, even though externally it appears that rivers like Manasiganga and Yamuna and mountains like Govardhan are unconscious. In fact, they are completely conscious. Because the Adhisthapati Devi, the presiding deity of the Yamuna, is Vishakha Devi herself, a very beloved gopi of Krishna. Then all the rivers, not just the Yamuna, but even like Manasiganga, and those rivers which are hidden and flowing underground Vrindavan by the Saraswati, they are all conscious and full of ecstatic love for Krishna. The Manasiganga which we see now, which is presently over a pond, only a pond, that was really a stream of the Mother Ganga, by Ganga Devi said. Therefore the Yamuna, feeling great happiness upon hearing the sound of Krishna's flute, took Krishna into her heart. She is thinking how to meet Krishna, therefore her prem is expressed in the form of whirlpools. When Sri Krishna comes to Yamuna, then she flows up to even to the chest of Krishna. But because Krishna is after calm or self-satisfied, he has no need of anyone. Therefore, being embarrassed, the Yamuna falls at his feet and offers flowers to her. And she embraces Krishna's feet by her waves. Thus her calm bed, her desire to serve Krishna is pacified and she becomes peaceful.
Mother Lakshmi ke baare mein kya?
Sarasvati ko chhod ke upar ke paas aa.
is giving lotus. Lotus means Kamala. Kamala. Kamala means from Kamala. Kamala means Lakshmi. That means gopis are more superior to Lakshmi, even worshipped by Lakshmi.
Therefore, the river Yamuna is often called Kamala's, or her lotus is to the feet of Krishna. So now the meaning of Kamala is Lakshmi. Therefore, Lakshmi, the gopis are worshipful even for Lakshmi Devi. Therefore, the Yamuna, or actually the Kalindi, her husband is the ocean. But giving up her ocean, she is running towards her paramour lover, Sri Krishna.
Kalindi's husband, not so ocean.
The river's husband is
ocean. Here, Jamuna Devi or Kalindi Devi, her husband, sorry, Vishaka Devi, her husband is not ocean. This one is the Parambo. So, they are giving up to going ocean, they are coming to Krishna to be with him.
Therefore, we should think of all these things while performing bhajan if we have the qualification. Therefore, Guru said, it's a matter of great sadness. Life is very short. So today, one very beloved disciple of Sri Gurudev, and she is more than 20 years with Sri Gurudev, performing bhajan there in Sri Guru Sanat Gauri Math. Guru Mahārāj said, really, outside Vrindavan, she never left anywhere. So before, she came from a very good family in Punjab side, and she was even had noticed that since they was hospital in Delhi. She went to Chicago and was there for many years, but she gave up everything and surrendered everything to the feet of Sri Gurudev. Gurudev said, really, her service mood and her affectionate. You know, those devotees in Rupa Sanat Deva know Bhimani Deva is so affectionate to all the Brahmacharis and all the sannyasis. She used to take them to the hospital if anyone was sick, she would take care of everyone. And Gurudev said, always she used to come on our parikramas together. So Gurudev heard the news 2 days ago that Bhimani said, look, Bhimani Deva was sick, but Gurudev said, oh, it cannot be so serious. I will see her afterwards. So this morning, her family members took her to Delhi and she was weeping, I don't want to leave Vrindavan. She was saying, if anything happens to me, I want to perform my last rites here in Vrindavan. So this morning she left the body. And so Guru was saying that we are praying. Guru says, he is praying that all devotees should pray in the feet of Sri Gandharva, Giddhari, and Sri Giraj Maharaj. That wherever she goes, she may be peaceful and her bhajan may increase in her next destination. Go Premanandini.
Hare Krishna.
Kalke antar garhi patkana bolu.